हॉल में पसरा हुआ सन्नाटा अब जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। विश्वनाथ की नज़र अभी भी शकुंतला पर टिकी हुई थी और शकुंतला का दिल जैसे हर धड़कन के साथ डर और तेज कर रहा था। कुछ सेकंड, फिर विश्वनाथ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज मैं जो कहने जा रहा हूं, उसकी आवाज़ गहरी थी। वो आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं और शायद तुम सबके लिए भी नहीं। सब लोग चुपचाप उसे देखने लगे। शकुंतला ने हल्का सा होंठ भींच लिया। शकुंतला, उसने सीधा उसका नाम लिया। उसका दिल जैसे गले तक आ गया। तुम अपने घर वापस जाना चाहती थी। ये सुनते ही शकुंतला की आंखें फैल गईं। हॉल में हल्की सी सरसराहट हुई। आर्यन और विशाल एक दूसरे को देखने लगे। अक्षरा की सांस जैसे अटक गई। विश्वनाथ ने बिना रुके आगे कहा, और मैंने मना कर दिया था। उसकी आवाज़ में अब भी वही सख्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक थकान भी थी, क्योंकि मैं उस दिन को नहीं भूल पाया जब मेरी बहन मेरे सामने टूटी हुई खड़ी थी। शकुंतला की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। मैंने बहुत सोचा, बार बार वही सवाल आया, क्या मैं अपनी बहन को उसकी खुशी से दूर रख रहा हूं? पूरा हॉल अब पूरी तरह शांत था। हर कोई बस उसकी बात सुन रहा था। और जवाब, उसने धीरे से कहा, हां था। ये सुनते ही सब चौंक गए। शकुंतला तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं अपने डर में, अपने गुस्से में तुम्हारी जिंदगी का फैसला खुद लेने लगा था। उसने पहली बार नजरें झुका ली और ये गलत था। शकुंतला की आंखों से आंसू बह निकले। इसलिए, विश्वनाथ ने गहरी सांस ली, मैंने बहुत सोचा, बार बार वही सवाल आया, क्या मैं अपनी बहन को उसकी खुशी से दूर रख रहा हूं? पूरा हॉल अब पूरी तरह शांत था। हर कोई बस उसकी बात सुन रहा था। और जवाब, उसने धीरे से कहा, हां था। ये सुनते ही सब चौंक गए। शकुंतला तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं अपने डर में, अपने गुस्से में तुम्हारी जिंदगी का फैसला खुद लेने लगा था। उसने पहली बार नजरें झुका ली और ये गलत था। शकुंतला की आंखों से आंसू बह निकले। इसलिए, विश्वनाथ ने फिर उसकी तरफ देखा, अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो जाओ। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। शकुंतला को लगा उसने गलत सुना है। भैया, उसकी आवाज कांप गई, मैं सच में जा सकती हूं? विश्वनाथ ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, दिल से सब भूल कर जाना, कोई बोझ लेकर नहीं, कोई शिकायत लेकर नहीं, वरना वो घर तुम्हें फिर से तोड़ देगा। शकुंतला की आंखें अब पूरी तरह भर चुकी थीं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक हल्की सी राहत भी थी। और एक बात, विश्वनाथ की आवाज फिर सख्त हुई, अगर इस बार किसी ने भी तुम्हारी तरफ उंगली उठाई तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। उसकी आंखों में वही पुरानी आग वापस आ गई थी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हॉल में खड़े सब लोगों ने उसकी बात की गंभीरता महसूस की, लेकिन अगले ही पल शकुंतला दौड़कर उसके गले लग गई। भैया, उसकी आवाज टूट गई, थैंक यू। विश्वनाथ कुछ सेकेंड तक स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसने भी उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें भी हल्की नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी मम्मा, पीछे से रम्या दौड़ती हुई आई और शकुंतला से लिपट गई। आप सच में जाएंगे? उसकी आंखों में उत्साह था। हां, शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। ये, रम्या खुशी से उछल पड़ी। तभी विशाल भी पास आ गया। मम्मा, अब हम सब साथ रहेंगे ना? उसके इस सवाल में मासूम उम्मीद थी। शकुंतला ने उसे भी गले लगा लिया। हां, उसने धीरे से कहा, सब ठीक होगा। अक्षरा ने ये सब देखा, उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। आखिरकार वो मुस्कुराई। आर्यन ने भी हल्का सा सिर हिलाया। अब बात बनी। रत्ना देवी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर फैसला हो ही गया है। उनकी आवाज में अब सख्ती कम थी और एक मां की चिंता ज्यादा, तो सब अच्छे से होना चाहिए। सुषमा देवी, जो अब तक चुप थी, अचानक मुस्कुरा उठी। अरे मधु,
उन्होंने जोर से आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई, जी मालकिन, सबका मुंह मीठा करवाओ। सुषमा देवी ने खुशी से कहा। आज हवेली में बड़े दिनों बाद सबके चेहरे मुस्कुराए हैं। इतना सुनते ही हॉल का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ देर पहले डर और सन्नाटा था, अब वहां हल्की हल्की हंसी, राहत और एक नई शुरुआत की खुशबू थी। मधु मिठाई लेकर आई, सबको देने लगी। रम्या ने सबसे पहले एक लड्डू उठाया। ये मम्मा के लिए, उसने हंसते हुए कहा। सब हल्का सा हंस पड़े। शकुंतला ने लड्डू लिया और एक पल के लिए सबको देखा। भैया, माँ, बच्चे, पूरा परिवार। दिल में एक अजीब सी शांति आई, लेकिन उसी शांति के पीछे एक हल्की सी घबराहट भी थी। क्या सच में सब ठीक होगा, उसने मन ही मन सोचा। क्योंकि अब सिर्फ फैसला लेना ही नहीं था, उसे निभाना भी था। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर अब माहौल पहले जैसा भारी नहीं था। शकुंतला अपने कमरे में आई। दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन इस बार घबराहट से नहीं, एक नई उम्मीद से। उसने बिना देर किए फोन उठाया, वीरेंद्र का नंबर डायल किया। हेलो, उधर से बेचैन आवाज आई। मैं, शकुंतला कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे से बोली, मैं घर वापस आ सकती हूं। एक पल के लिए उधर पूरी खामोशी छा गई। सच? वीरेंद्र की आवाज कांप गई। हां, उसकी आंखें नम हो गईं। भैया ने इजाजत दे दी। वीरेंद्र जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मैं अभी आता हूं। करीब एक घंटे बाद हवेली का दरवाजा खुला, वीरेंद्र अंदर आया। आज उसके चेहरे पर वही पुरानी झिझक थी, लेकिन साथ में एक सच्चाई भी। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वो सीधे आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने रत्ना देवी के पैर छुए। प्रणाम मां, फिर सुषमा देवी के भी। आशीर्वाद दीजिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हल्के से उसे आशीर्वाद दिया। हॉल में एक अजीब सी शांति थी। फिर वीरेंद्र ने नजर उठाई और सीधा विश्वनाथ की तरफ देखा। कुछ सेकंड दोनों की आंखें मिली, जैसे बिना बोले ही बहुत कुछ कह रहे हों। फिर वीरेंद्र आगे बढ़ा। मैं जानता हूं, उसकी आवाज साफ थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। विश्वनाथ चुपचाप सुनता रहा, लेकिन इस बार वीरेंद्र ने ठहर कर कहा, मैं सिर्फ शकुंतला को खुशी नहीं रखूंगा, उसके सम्मान की भी रक्षा करूंगा। उसकी आंखों में इस बार सच्चाई साफ थी। किसी के सामने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हॉल में खड़े सब लोगों ने उसकी बात सुन रहे थे। शकुंतला की सांस जैसे थम गई थी। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे उसके हर शब्द को परख रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कल सुबह, उसने साफ शब्दों में कहा, आकर उसे ले जाना। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। फिर शकुंतला की आंखों में चमक आ गई और वीरेंद्र ने हल्के से सिर झुका दिया। धन्यवाद, लेकिन असली शुरुआत अब होने वाली थी।